आस्था के वार्ड में घुसकर उसने अंदर से कुंडी लगा ली थी। वहीं रश्मि ने जैसे ही ये देखा वो दरवाज़ा पीटने लगी और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो यहाँ पर अरमान? प्लीज, इस तरह से आप पेशेंट के पास नहीं जा सकते हैं। इट्स नॉट सेफ फॉर हर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरमान, बाहर आ जाओ, पेशेंट के साथ इस वक्त तुम्हारा रहना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। डॉक्टर रश्मि अरमान को आवाज़ दे रही थी, लेकिन अरमान सिंघानिया को ऑर्डर लेना सख्त जहर लगा करता था। जल्दी ही अरमान आस्था के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने आस्था को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। आस्था के गाल पर अरमान की उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। साथ ही अरमान ने जो उसका गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश की थी, पूरे गले पर उसकी उंगलियों के निशान छप चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो आस्था के चांद जैसे बेदाग चेहरे पर अरमान की उंगलियों के निशान एकदम दाग की तरह दिखाई दे रहे हों। अरमान आस्था के ठीक बराबर में जाकर बैठ गया और उसकी ओर देखकर बोला, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से यहाँ आराम करें, क्योंकि इस बात की मैंने आपको परमिशन नहीं दी है। आपको अभी और इसी वक्त उठना होगा। याद रखना मिसेज अरमान आस्था सिंघानिया, अगर आपने मुझे बिना मेरी मर्जी के छोड़कर जाने की कोशिश की तो आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपके साथ क्या से क्या कर सकता हूँ। आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो इसीलिए आपको उठना होगा और होश में आना होगा, समझी? अरमान का गला भर रहा था, लेकिन इमोशनलेस चेहरे के साथ वो उस वक्त आस्था की ओर देखकर बोल रहा था। अरमान ने आस्था के जिस्म में कोई हलचल न देखकर एक बार फिर बोला, आपको सुनाई नहीं दिया? मैं नहीं जानता कि आप अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में आई हैं या फिर किसी और की मर्जी से मेरी जिंदगी में आई हैं, लेकिन अब आप मेरी जिंदगी में आ चुकी हैं और अब मुझे बिना बताए आपको मेरी जिंदगी से जाने का कोई हक नहीं है। अगर तुमने मुझे बिना बताए मेरी जिंदगी से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार की जान ले लूंगा, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो अब फटाफट से उठो, ये अरमान सिंघानिया का हुक्म है। अरमान ने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और एक टक उसकी ओर देखे जा रहा था। वहीं आस्था, क्योंकि उस वक्त बेहोश थी, अरमान की कही हुई बातें उसके कानों में तो जा रही थीं, लेकिन वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक अलग ही दुनिया में हो। फिलहाल जैसे ही अरमान ने आखिरी लाइन बोली, मैं तुम्हारे पूरे परिवार की जान ले लूंगा, इस बात से आस्था एकदम से ही होश में आ गई और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलनी शुरू की। अब जैसे ही अरमान को आस्था के शरीर में हलचल दिखाई दी, उसने फटाफट से उसकी ओर देखकर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और कहने लगा, थैंक यू मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया मेरी बात मानने के लिए, क्योंकि अगर आज आप मेरी बात नहीं मानती तो मजबूरन मुझे आपके पूरे परिवार को खत्म करना पड़ता। कहीं ना कहीं अरमान आस्था को माफी भी मांगना चाहता था, लेकिन उसके व्यक्तित्व, उसकी आभा उसे माफी मांगने की इजाजत नहीं दे रहा था। सारी बातें बोलने के बाद अरमान बोला, एक और बात मिसेज अरमान सिंघानिया, आप पहली खुशकिस्मत लड़की हैं या इंसान है जिसे मैंने थैंक यू बोला है। ऐसा कहकर अरमान बाहर की ओर आने लगा। वहीं रश्मि, जो कि दरवाजे पर खड़ी हुई थी, अरमान से दरवाजा खोले जाने की गुहार लगा रही थी। उसके बाद वो पांचों के पांचों रश्मि के आसपास खड़े हो गए। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं अरमान गुस्से से एक बार फिर आस्था को नुकसान न पहुंचा दे, तो इसीलिए वो सब भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दादाजी तो केवल एक जगह बैठे हुए सपाट चेहरे के साथ ये सब कुछ देख रहे थे। अरमान ने जल्दी ही जैसे ही दरवाजा खोला, वो सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तभी अरमान उन सब की ओर देखकर बोला, आस्था को होश आ गया है, डॉक्टर रश्मि आप जाकर उसे चेक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बाकी पांचों को अंदर जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अरमान सिंघानिया को अपनी चीज आस्था के लिए अचानक से ही काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी। वो जल्दी ही डॉक्टर रश्मि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और फटाफट से वो अंदर जाकर आस्था को चेक करने लगी। वहीं जैसे ही उन सब ने ये सुना कि आस्था को होश आ गया है, तो वे सब भी बहुत खुश हो गए और खुशी से अचानक अरमान, जो कि उनके ठीक सामने खड़ा हुआ था, उन्होंने उसे गले से लगा लिया और एक पल के लिए वो सब के सब अरमान के गले से लगे हुए थे। वहीं दादाजी, ये बात सुनने के बाद आस्था को होश आ गया है, उन्होंने राहत की सांस ली और वो भी फटाफट से धीरे से उठकर अरमान और बाकी सबके पास आ गए। अब जैसे ही उन सबको इस बात का एहसास हुआ कि खुशी में उन्होंने अरमान को ही गले से लगा लिया है, तो जल्दी सबके सब अलग होकर खड़े हो गए, क्योंकि अभी उनका इरादा अरमान से बात करने का नहीं था। कहीं ना कहीं अपना गुस्सा अभी भी वो अरमान पर उतारना चाहते थे और साथ ही साथ उससे बात ना करके वो उसे इस बात का एहसास कराना चाहते थे कि अभी भी वे सबके सब अरमान सिंघानिया से नाराज हैं। लेकिन अब तो सबके सब आवेश में जाकर उसके गले से लग चुके थे, तो अब गुस्सा करने का कोई फायदा था ही नहीं। अभी वे सब एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं बांटी रहे थे और दादाजी ने आकर अरमान के सर पर हाथ रख दिया, क्योंकि भले ही अरमान ने अपना दर्द, अपना गुस्सा या कुछ भी किसी को शेयर नहीं किया था, लेकिन दादाजी अरमान को बचपन से जानते थे, तो इसीलिए वो ये समझ चुके थे कि अगर इन सब में इस वक्त सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरमान है। तो इसीलिए दादाजी ने अरमान के सर पर हाथ रखा। वो पांचों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अभी वे सब दादाजी से कुछ कहना चाहते थे कि तभी उस वक्त डॉक्टर रश्मि बाहर आई और कहने लगी, वाकई ये तो कमाल ही हो गया है। आस्था अब बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए उसे होश आया था, लेकिन अभी उसके प्रॉपरली वो ठीक नहीं है। पर हाँ, कुछ एक दो घंटे में वो काफी बेहतर हो जाएगी और आप सब उसे मिल पाएंगे। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा, आकाश और बाकी सब काफी हद तक खुद को हल्का फुल्का सा महसूस करने लगे। और क्योंकि उन सबने पहली बार कान्हा जी से प्रार्थना की थी, तो इसीलिए वो कान्हा जी का धन्यवाद देने के लिए सभी के सभी एक बार फिर दौड़कर मंदिर के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब केवल वहां पर अरमान और आकाश ही बचे थे। डॉक्टर रश्मि एक नजर आकाश की ओर देखते हुए अपने केबिन में चली गई, लेकिन आकाश अब केवल वहीं लगकर एक जगह बैठ गया था। तब दादाजी अरमान के पास आए और बोले, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने आस्था को शारीरिक रूप से चोट पहुँचाई है। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अरमान हैरान हो गया, क्योंकि बाकी सबने तो दादाजी को कुछ भी नहीं बताया था, तो फिर दादाजी ऐसे कैसे कह सकते थे। अरमान दादाजी को सवालिया नजरों से देख रहा था। वो दादाजी की ओर देखने लगा। तब आलोकनाथ जी बोले, तुझे क्या लगता है कि भले ही तेरे दोस्त मुझे कुछ ना छुपाए, लेकिन मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तुझे क्या लगा बेटा, आस्था तेरे किसी दुश्मन से मिली हुई है, इसीलिए तूने उस बच्ची पर सारा गुस्सा उतार दिया। क्या तूने एक बार भी अपने दादाजी से बात करना जरूरी नहीं समझा कि मैंने तेरी जिंदगी का फैसला लिया था? और जब तूने अपनी पूरी जिंदगी पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दी थी, तो तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी जिंदगी का कोई गलत फैसला लेता? आस्था को पहली नजर में देखते ही मैंने पसंद कर लिया था। हालांकि तूने प्रियंका के लिए शादी के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन प्रियंका मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी। लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी शादी करवाना चाहता था, चाहे प्रियंका से या फिर किसी और से। लेकिन जब मुझे इस बात के बारे में पता चला कि प्रियंका शादी का मंडप छोड़कर भाग गई है, तब मैंने आस्था को तेरे लिए चुना था।
तू जानता है, वो अभी केवल 18 साल की है और तू 27 साल का है। तू समझ रहा है इस उम्र के फर्क को? वो बच्ची है अभी, लेकिन उसे वक्त मुझे सिंघानिया खानदान की इज्जत बचानी थी, क्योंकि मैं समझ चुका था कि अगर प्रियंका अगर शादी से भाग गई है, तो जरूर इसके पीछे तेरे किसी दुश्मन का हाथ हो सकता था। इसीलिए तुझे बिना पता लगे मैंने आस्था को तुझसे शादी करने पर मजबूर किया था और उस बेचारी बच्ची की शादी तुझसे करवाई। लेकिन शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए इस तरह से किसी मासूम लड़की की कुर्बानी नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। एक बार आस्था बेटी ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आस्था को उसके घर पर हमेशा हमेशा के लिए भेज दूंगा, और जो भी वो अपना सपना पूरा करना चाहती है, वो अब आज़ादी से कर सकती है। अब जैसे ही अरमान ने दादाजी की ये बातें सुनी, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। कहाँ तो वो अभी तक अपने मन में ये बात बैठा चुका था कि आस्था को अरमान सिंघानिया की जिंदगी में वीर रायचंद ने प्लांट किया है, लेकिन अब दादाजी की इस तरह की बातें सुनने के बाद अरमान के दिमाग में शक के बादल छट चुके थे और अब वो कुछ गहरे ही अफसोस में डूबता चला गया था। हालांकि उसने आस्था की जानकारी निकलवाने के लिए ऑलरेडी अपने आदमियों को लगा रखा था, जिनमें से देव एक था, लेकिन अब दादाजी के मुंह से ये सुनने के बाद कि आस्था को शादी के लिए दादाजी ने ही मजबूर किया था, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो तुरंत बिना रश्मि या बिना किसी और देखे तुरंत आस्था के वार्ड में घुस चुका था, क्योंकि उसके लिए अब बाहर खड़े रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वो इस वक्त आस्था को देखना चाहता था। आस्था के वार्ड में घुसकर उसने अंदर से कुंडी हैगाली थी। वहीं रश्मि ने जैसे ही ये देखा, वो दरवाज़ा पीटने लगी और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो यहाँ पर अरमान? प्लीज, इस तरह से आप पेशेंट के पास नहीं जा सकते हैं। इट्स नॉट सेफ फॉर हर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरमान बाहर आ जाओ, पेशेंट के साथ इस वक्त तुम्हारा रहना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। आस्था को जल्दी ही होश आ गया था और आस्था ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने अपने आसपास अच्छी तरह से देखा और इस बार उसे ये फीलिंग नहीं आई कि वो स्वर्ग में है, क्योंकि इस बार वो उस कमरे को अच्छी तरह से पहचानती थी। ये वही कमरा था जहां वो पहले भी एडमिट हुई थी। वेल, जल्दी ही डॉक्टर रश्मि ने सबको बता दिया कि आस्था को होश आ गया है, अब सब लोग एक एक करके उससे मिल सकते हैं। सबकी नज़र सबसे पहले दादाजी पर गई। दादाजी बिना किसी की ओर देखे जल्दी ही आस्था से मिलने के लिए चले गए। वहीं आस्था ने जैसे ही दादाजी को देखा, तो अचानक से कुछ आंसू उसकी आंखों में आ गए। तब दादाजी आस्था के पास बैठे और उसका हाथ पकड़ चिंता भरी हुई आंखों से देखते हुए बोले, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बेटी कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं इस बात पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि आज तुम्हारी जो ये हालत है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, मेरे द्वारा किए गए गलत फैसले की वजह से है। लेकिन बेटी, आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं बेटी बनकर रहोगी और मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था मैं वो सब वापस लेता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे पोते को सुधारने की, मेरे पोते की ज़िंदगी में प्यार लाने की, क्योंकि मैं ये बात समझ चुका हूँ कि अरमान की ज़िंदगी सुधारने के लिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ गलत नहीं कर सकता हूँ। एक पल के लिए मैं थोड़ा सा स्वार्थी हो गया था जो मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा और तुम्हारे सामने शर्त रख बैठा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बेटी, अब तुम पर किसी तरह की कोई आँच नहीं आएगी।
तुम्हारे ये दादाजी का वादा है, अब हम सब कुछ संभाल लेंगे। कहीं ना कहीं ये कहते हुए दादाजी का गला भर आया था।